ओम शांति, ओम शांति। आज तो विशेष दिन है, प्यारे अव्यक्त बाप दादा से मिलने का दिवस है। इस सीजन की पहली अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे प्यारे बाप दादा के द्वारा। तो आगे बाप मुरली के बाद बताएंगे कि कैसे मिलन होगा, कैसे आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अभी अभी हम सब ने बहुत प्यारा गीत सुना, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। बड़े नशे का गीत है ये। तो हम कैसे पार लगाएंगे, बाबा ने आज बहुत सुंदर टाइटल दिया है उसके लिए, तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, सबको पार ले जाने वाले। वहां तो शरीरों को पार ले जाते, कोई बाढ़ में फंस जाता है, भूकंप में फंस जाता है तो उनको निकालते हैं। ये जैसे पार ले जाना है, बचाते हैं। परंतु अभी इस समय सारी दुनिया दलदल में फंसी हुई है, तो दलदल में भी फंस जाते हैं ना, तो फिर उससे पार निकालना पड़ता है। तो कौन सी दलदल में फंसी हुई है सारी दुनिया? एक तो माया की दलदल है। माया को जैसे माई बाप समझ लिया है, विकारों को, वो भी एक दलदल है, फंसे हुए हैं। फिर भक्ति की भी दलदल है, गुरुओं की भी दलदल है, न जाने कितनी प्रकार की दलदल है, और मनुष्य उसमें फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो, रूहों को पार ले जाते हो। कहाँ ले जाते हो? मुक्ति और जीवन मुक्ति में। तो कैसे पार ले जाते हैं? बाबा को साथी बनाकर, क्योंकि हम अकेले तो पार नहीं होंगे और सबको पार ले जाना है, तो साथ में कौन चाहिए साथी? स्वयं भगवान हमारा साथी है, जो हमारे ही मदद से सारे विश्व को सेल्वेज करते हैं, पार करते हैं। तो इतना बड़ा टाइटल भी बाबा देते हैं, लेकिन साथ साथ बाबा जिम्मेदारी भी देते हैं। तो कहाँ तक हम सबको पार ले जा रहे हैं, वो हम अपने आप से पूछे। तो बहुत सुंदर टाइटल है ये। और बाबा कहते हैं सब फंसे हुए। जरा सोचते हैं कैसे सब फंसे हुए? वो समझते भी नहीं है कि हम फंसे हुए। शांति की तलाश है, सुख की तलाश है। और जैसे हिरण का बाबा मिसाल देते हैं, पानी की तलाश है, उनको लगता है कि वहाँ पानी है पर दलदल होती है। रेगिस्तान में थोड़ा सा मिट्टी में, रेत में दलदल होती है तो उसमें फंस जाते हैं, समझते हैं यहाँ पानी मिलेगा। तो शांति के लिए भटकते हैं और फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम बच्चे ही सबको पार ले जा सकते हो। पर शरीरों को पार ले जाने की बात नहीं, हो तो शरीरों सहित आत्मा को बचाते हैं। तो या तो आत्माओं का सेल्वेशन करना है, तो कैसे करेंगे? ज्ञान और योग से। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बातें सुनाई है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 31/10/2025 है। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल यानी रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। हम बहुत बड़ी सेल्वेशन देते हैं, सबको सबको पार ले जाते हैं, लेकिन हम कैसे है? गुप्त है वो, तो प्रत्यक्ष होते हैं ना। आर्मी आती है, मिलिट्री आती है, किस किस रूप से वो पार ले जाते हैं। तो रूहानी इनकॉग्निटो गुप्त सेल्वेशन आर्मी, तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं, उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तो राजाई प्राप्त करने लिए गॉड, राजाई प्राप्त करने लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती है। होगी क्या कभी कि भगवान खुद आकर के ऐसी गॉडली गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोले और हम सबको पढ़ाए और पार ले जाए? इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। कोई यूनिवर्सिटी में राजाओं का राजा नहीं बनते हैं, परंतु इस यूनिवर्सिटी में हम राजाओं का राजा बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहां आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? यहां बैठे और एक ही संकल्प, मैं आत्मा बाबा की याद में बैठा हूं, अब बाबा हमको हम पढ़ाएंगे। तो अब यही तो बाबा कहते हैं, यहां आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, क्योंकि यहां तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम तो बाप के घर में बैठे हो, यूनिवर्सिटी में बैठे हो, और तो कोई बातें यहां है ही नहीं। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। क्यों आते हैं मधुबन? बेहद के बाप से मिलने। कौन कहते हैं हम बेहद के बाप से मिलने जा रहे? कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है, ब्रह्मा तन उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं, यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। कैसे होगा बेड़ा पार? अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से ही बेड़ा पार होगा। हर एक का अब बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा, है ना। हम तो मैं मदद करते हैं उनको, उस दलदल से निकालते, फिर अपना पुरुषार्थ उनको करना है अगर पार होना है तो। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे मांझी मेरी नैया पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वो तैराक होता है, उनको सिखाता है कैसे तैरना होता है, तो पहले तो बहुत मदद करता है, फिर छोड़ देता है, वो अपने आप तैरते हैं। हर वक्त तो नहीं वो उसको पकड़ करके तैराने सिखाता है। तो बाबा कहते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वो सब है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। आत्मा को तैरना है, वहां तो शरीरों को तैराते हैं। ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ यानी दुबन दलदल में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। तुम पानी समझ जाती है, जाता है वो हिरण, परंतु वो होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, बड़े बड़े स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है ना। बारिश बहुत होती है तो वहां कीचड़ होती है और गाड़ी उसमें फंस जाती है। फिर उनको सैल्वेज करते हैं सब मिल करके, कैसे उसको वहां से उठाते हैं, फिर उनको सैल्वेज करते हैं। अब वो सब है सैल्वेशन आर्मी, पर तुम वो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वो सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को, आदमी की, वो तो आदमी फंस गया तो आदमी की मदद चाहिए उनको सैल्वेज करने लिए। यहां तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है, तो बाप रास्ता बताते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। तो तुम तो निकल आए हो, फिर तुम दूसरों को रास्ता बता सकते हो। खुद फंस गया, चलो निकल आया, तो दूसरों को रास्ता बताएगा, दुबन से निकालेगा। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विशेष सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं। क्या है रावण का काम? दुख के सागर में डुबोना। तो बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। क्या समझाते हो? दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा कोई ग्लानी नहीं करते हैं। जब बाबा कहते हैं उनको जानते बिल्कुल नहीं, ये कोई ग्लानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं कि भूल जाना ये भी ड्रामा में नूंद है। तो ड्रामा का राज समझाते हैं, ये भी समझाने के लिए कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र पांच विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय है। हाँ, ये बाबा ग्लानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए ये बता रहे हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी है। दैवी संप्रदाय संपूर्ण निर्विकारी है, तो उनको जाकर नमन करते हैं आसुरी संप्रदाय। सन्यासियों को भी नमन करते हैं, वो भी घर बार छोड़ जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। सन्यासियों को भी नमन करते हैं और देवताओं को भी नमन करते हैं, लेकिन दोनों में बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं है। सब कहते हैं, क्या कहते हैं? सब कहते हैं ईश्वर की गति मति न्यारी। गाते हैं भगवान की महिमा करते, कहते ईश्वर तेरी गत मत सबसे न्यारी। परमात्मा कैसे गति देते हैं, उनकी जो मत है वो सबसे न्यारी मत है। ईश्वर का अंत पा नहीं सकते हैं। दूसरा भी इसमें अर्थ होता है कि ईश्वर का अंत पाना मुश्किल है, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है। वो जो कुछ करता है सब न्यारा है। ईश्वर का अंत पा नहीं सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है, जिस शब्द से भगवान से प्यार उत्पन्न हो वो कौन सा अक्षर है? हाँ, बाबा। आज बाबा कहते हैं बाप, पिता। पिता, बाप, ये बहुत प्यारा शब्द है। इसीलिए कई रूपों में ये बाप शब्द यूज होता है ना। कोई किस पर कुछ हक जमाता है, कहेंगे तेरे बाप का है क्या? ये नहीं कहेंगे तेरे पिता का है, तेरे बाप का है, तो एक प्रकार की गाली भी हो जाती है। लेकिन या तो बाप शब्द बहुत जल्दी जल्दी मुंह पर आता है, तो बाप अक्षर सबसे मीठा है, सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे पिता को नहीं जाना तो उसको क्या कहेंगे, अनाथ, ऑर्फन्स। मैगजीन में भी निकाला है, उस समय मैगजीन थी तो उसमें निकलवाया था, मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, ये बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। हाँ, समझाने लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, इनमें आसुरी गुण है। आज दुनिया में हर एक में आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार ही नहीं है, बाबा के घर में तो लड़ने की दरकार ही नहीं है। वो है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय। तो बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये हो नहीं सकता। दे अभी इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। दे अभिमान और देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। दे अभिमान वाले तो लड़ते ही रहेंगे और देही अभिमान मानी जो होंगे वो शांत रहेंगे, तो कितना फर्क है। दे अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, देह से तो संबंध तो है ही है ना, तो जरूर है वहां भी संबंध होंगे, तो इसीलिए देह धारियों से संबंध तो है ही। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो फिर संगम पर मिला फिर प्रायलोक हो जाता है। तुम ही श्री मत पर चल प्रारब्ध पाते हो, तो बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की भी राजाई है। द्वापुर से सिंगल ताज राजाओं की राजाई चलती है। अभी तो वो राजाई भी नहीं है, सिंगल ताज वाले राजाओं की भी राजाई नहीं है, दोनों ताज चले गए। अब वो राजाई भी नहीं रही, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भले नाम रखते हैं गीता पाठशाला, वो गीता पढ़ाते हैं तो गीता पाठशाला नाम रखते हैं, परंतु पढ़ाते कौन है, तो कहेंगे श्री कृष्ण भवानुवाच, श्री कृष्ण पढ़ा रहे हैं उन गीता पाठशालाओं में। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा न सके, श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, दिखाते हैं ना वहाँ उज्जैन में एक स्थान बना हुआ, जा कहते हैं श्री कृष्ण ने वो सांदी पनी वो से दिखाते आश्रम, वहां जाकर के उसने पढ़ाई पढ़ी। तो श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी है। बाबा कहते ऐसे भी नहीं कोई संस्कृत में गीता गाई है, देवताओं ने कोई संस्कृत भाषा सीखी और फिर श्री कृष्ण ने संस्कृत में गीता सुनाई, बाबा कहते ऐसे तो है नहीं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाते हैं। कितनी भाषाएं हैं भारत में, हाँ तो जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की भाषा नहीं है, राजाएं तो राजपूत थे, तो वो कुछ संस्कृत थोड़ी सुनाते थे, संस्कृत भाषा तो फिर बाद में विद्वानों की भाषा बन गई, राजाओं की भाषा नहीं थी। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है, बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर तुम जीत पहनो, प्रतिज्ञा कराते हैं, है ना, बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तो प्रतिज्ञा कराते हैं, यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, प्रलोभन देते ना बाबा, क्यों काम पर जीत पाओ, क्योंकि तुम इससे जगत जीत बनोगे। ये है मुख्य विकार, ये हिंसा द्वापर से चली आती है, काम विकार की हिंसा बाबा कहते द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। काम विकार में गए, वाम मार्ग शुरू हुआ, गिरती कला शुरू हुई। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है, खजुराहो में जाओ, वहां मध्य प्रदेश में खजुराहो है, कितने सारे मंदिर है, लेकिन बाहर जो मूर्तियां हैं ना, सब देवताओं के अश्लील चित्र, काम विकार के चित्र, तो सब वाम मार्ग के चित्र हैं। उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छीछी चित्र बनाए हैं, बाकी वाम मार्ग में कब गए, ये कब से वाम मार्ग में गए, विकारी मार्ग में गए, ये उसकी तिथि तारीख तो कुछ है नहीं, वो नहीं लिखा है उन मंदिरों में, ये कब वाम मार्ग में गए, लेकिन उनके गंदे चित्र हैं। सिद्ध होता है कि काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, काम विकार में गए, काम चिता पर बैठे तो काले बन जाते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है, उस देवता रूप में काम चिता पर नहीं बैठते हैं। जब वो नाम रूप बदल करके द्वापर में आत्मा आती है, तब काम विकार में फंसते हैं, तब कहेंगे वाम मार्ग में गए, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है, क्योंकि जन्म बदलता गया। तो काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन पड़ते हैं, पर वो जो चित्र दिखाते उसमें क्या लोगों को लगता है कि देवताएं ऐसे काम विकार में गए। तो काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन पड़ते हैं। अभी तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसीलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं, जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं, है ना, कितने अपंग बनते हैं, उसको अपंग न कहकर चैलेंज कहते हैं आजकल, चुनौतीपूर्ण है उनका जीवन, क्योंकि कोई अंग नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कैसे बन पड़ते हैं, शरीर भी कैसे बन पड़ते हैं, जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। अब वहां सतयुग में क्या होगा, वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं, अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसा ही है। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है, क्या पता नहीं है, प्रभु ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा गॉड सब कितने नामों से याद करते हैं, लेकिन क्या पता नहीं है उनका, परंतु उनको पता ही नहीं है, विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, पर वो कौन है पिता पता नहीं, हे बाबा आकर के शांति दो ऐसे भी कहती है, यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी, आत्मा अशरीरी हो जाए परमधाम चली जाती है तो शांति है, या कर्म इंद्रियों से पाठ बजाने और फिर विकारी बन जाते हैं, तो जो पाठ होता है वो भी विकारों वश, तो फिर शांति कहाँ से होगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी, विश्व में शांति थी, कब थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु फिर उसको भी लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है तो मनुष्य बिचारे कैसे समझे। जब इनका यानी देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते हैं, भारत में कहते एक धर्म हो एक राज्य हो एक एक हो, और खंडों में और देशों में ऐसे नहीं कहते हैं। तो एक धर्म था और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते हैं कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है, राम राज्य चाहिए सब एक हो, तो यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा अब जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ सारे विश्व के हम मालिक रहेंगे, चढ़े नशा हम सारे विश्व के मालिक रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे वो राजाई छीन नहीं सकता, ऐसे नहीं राजाई पाई और डरी डर की कोई छीन न ले, तो कोई हमसे वो राजाई छीन न सके। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। जब कहते हैं विश्व की राजाई तो सूक्ष्म वतन मूल वतन में राजाई की तो बात ही नहीं है, ये सृष्टि पर राजाई है। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है, ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं कैसे चक्र फिरता है, केवल बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, रचयिता है लेकिन रचना रचते हैं है नहीं और फिर रचते, ऐसे नहीं है। रचना पहले से ही है लेकिन परिवर्तन करते हैं इसलिए रचयिता है। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। चढ़ा और नशा, नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीर का भी श्रृंगार हो जाएगा। अभी आत्माओं का श्रृंगार करना है, शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। आप फिर सतयुग में जाएंगे तो शरीरों का श्रृंगार ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बाबा ने भी कल कहा ना सिंपल रहना है। उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा, आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। शरीरों का श्रृंगार हो जाएगा मन अपने आप नहीं आभूषण आ जाएंगे, लेकिन शरीर सतो प्रधान हो जाएगा। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे, इनों का सतो प्रधान शरीर, सॉरी, इनों का सतो प्रधान शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण का सतो प्रधान शरीर है ना, इसीलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है, प्राकृतिक सुंदरता इतनी है तो शरीरों की भी इतनी सुंदरता है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। अब माइट मिली कहाँ से, धर्म में शक्ति है। अभी तो वो धर्म अधर्म बन गए हैं तो शक्तिहीन है। धर्म पिताएं जब आए थे तो बहुत शक्ति थी उस धर्म में, धर्म पिताओं ने जो कुछ कहा उसको मानते थे। अभी उन्होंने जो कहा आजकल तो सब उसके विपरीत ही चल रहे हैं, तो धर्म की शक्ति भी खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं तुमको, तो बाबा कहते हैं गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, अब माइट मिली कहाँ से, एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। देवी देवताओं के धर्म में ही सच्ची माइट है। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। और धर्मों की राजाई तो बहुत बाद में शुरू होती है, पर देवताओं की राजाई तो शुरू में ही हो जाती है। और कोई, बाबा कहते हैं देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है, लिखा हुआ भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं, हमारे चित्रों पर लिखा हुआ। अब ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उनको सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूँ। ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ फिर ब्राह्मणों को ही देवता राजाई में ले जाता हूँ, सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात, कोई ऐसे नहीं ऐसे उठाकर ले जाते हैं, है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं, बाण चलाना भी सीखते हैं, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है कौन सा बाण, कौन सी बंदूक? हाँ बाबा कहते हैं योग बाण, योग बाण से तुम माया को जीतते हो, माया को तुम खत्म करते हो। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं माम एकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है, ये योग बल की बात है, हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त, तुम हो स्पिरिचुअल यानी रूहानी सेल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसी होती है। वो आर्मी को तो हम सब समझते हैं ना, वो जो सेना होती है उनको सब जानते हैं, पर रूहानी सेना भी होती है बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानते। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो, पार ले जाते हो, सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका नीचे चली गई, कोई सोनी द्वारका तो थी पर वो नीचे चली गई, ऐसे नहीं वो टूट फूट गई। बाकी सोने की लंका कहते हैं वो तो जल गई, हाँ तो इसीलिए सोने की लंका कोई होती नहीं है, सोने की द्वारका जरूर थी परंतु वो डूब गई, माना सत्युग त्रेता नीचे चला गया, द्वापर कलयुग ऊपर आ गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सोनी द्वारका नीचे चली गई है वो निकल आएगी, नहीं द्वारका में भी इनका राज्य था। सत्युग त्रेता में द्वारका तो होगी ना, तो द्वारका में भी इनका राज्य था परंतु वो सत्युग में था। सत्युगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग, लक्ष्मी नारायण की ड्रेस अलग होगी और राम सीता की ड्रेस अलग होगी, थोड़ा फर्क तो होगा ना, 19-20 का फर्क होगा दोनों की ड्रेस में। तो त्रेता की अलग भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रसम रिवाज होती है। जहाँ भी आते हैं ना, गांव से आते हैं लोग, तो गुजरात के गांव में तो कई प्रकार के गांव है, तो अलग अलग ड्रेस पहनते हैं अलग अलग, तो अब अच्छा लगता है। फिर अब माताएं होती है तो वो ऐसे पहन के घाघरा पहनते हैं, ये पता नहीं क्या क्या, तो हम कहते हैं कैसे ये पहनते हैं इतने बड़े, वो यहाँ वो पहन कर आते हैं चूड़ियां, तो परंतु हम कहते हैं आपको भारी नहीं लगता इतना सोना ये पहनते हैं, कहते नहीं भारी नहीं लगता, आदि हो गए ना, और वो ऐसे भी ड्रेस पहनते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक की अपनी अपनी ड्रेस है। तो बाबा कहते हैं तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो, सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका तो थी नहीं, भिन्न भिन्न ड्रेस। बाबा कहते हैं हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी, सत्युग का तो नाम लेते ही क्या हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। कहते ही है स्वर्ग पैराडाइस, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। तो मुख्य तो है ही, अभी हम जहाँ बैठे हैं हमारा यादगार बाबा कहते देलवाड़ा मंदिर, तो मुख्य तो है ही देलवाड़ा मंदिर, हूँ बहु तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा, शिव बाबा अगर है तो रथ भी है, नंदी भी है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है ये भी किसको पता नहीं है, ये शिव बाबा का रथ है। आदि देव कौन है? शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी तुम अभी समझते हो, तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी, शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, क्या आता है बुद्धि में? कितनी सहज बातें हैं, सब बुद्धि में आता है कैसे हम पवित्र थे। कितनी सहज बात है, भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके, स्वर्ग में अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगे? न परम धाम में कोई पतित आत्मा रह सके, न स्वर्ग में रह सके, पर ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, आग लगेगी शरीर तो जल जाएंगे और आत्माएं सब ऊपर चली जाएगी। और उसकी यादगार क्या है? आग लगती है शरीर जल जाते हैं, आत्माएं ऊपर चली जाती है, उसकी यादगार क्या है? होली, होलिका जलाते हैं ना, तो होलिका में क्या करते हैं? रोटी बनाते हैं, वो भी गोबर का छेना होता, तो उस पर रोटी बनाते हैं और धागा बांधते हैं, तो वो रोटी जो है वो जल जाती है, काली काली हो जाती है, परंतु धागा जो होता है वो नहीं जलता है। ये भी कैसे होता है ना? तो बाबा कहते शरीर जल जाएंगे, आत्मा नहीं जलेगी। प्रहलाद नहीं जला, होली का जल गई कहानी जो बताते हैं। तो बाबा कहते आत्माएं फिर कहाँ जाएगी? वापस घर जाएगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएगी, बाकी शरीर रह जाते हैं, वो फिर जल जाते हैं। ये सब निशानियां भी है, सब त्योहारों के रूप में निशानियां हैं। होलिका का अर्थ भी कोई समझते थोड़ी है, सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ नाम दे दिया है, तो रुद्र यज्ञ नहीं है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है, पर ज्ञान शब्द निकाल दिया है तो रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है, क्या है ये? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना, सारी दुनिया वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। पुष्कर में भी जो ब्रह्मा का मंदिर है उसके ऊपर लिखा हुआ है जगत पिता ब्रह्मा, तो सारी जगत का पिता, पहला पिता, आदि पिता, इसलिए उसको ब्रह्मा कहो। हर धर्म में उसको उसी रूप में मानते, एडम पहला आदमी, आदम पहला आदमी, तो आदमी को एडम आदम ये कह दिया, तो पहला मनुष्य। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना, ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, इनका सिजरा होता है ना, सिजरे देखिए ना। हाँ, तो कई मंदिरों में हम देखते हैं, बिरला मंदिर में तो एक जगह हमने देखा जयपुर में, वो सिजरा शुरू में किसने पहला मंदिर स्थापन किया, फिर उसके बच्चे, उनके वारिस, उनके वारिस, उनके वारिस, अभी कौन है बिरला वाले जो मंदिर लक्ष्मी नारायण का बनाते रहते हैं, वो सारा सिजरा बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का भी सिजरा रखते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है, फिर मूल वतन में भी सिजरा है, मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा कायदे मुजिब। कायदे मुजिब कैसे? पहले शिव बाबा बीज, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है वो सब सिजरा है आत्माओं का सिजरा, और यहाँ फिर है मनुष्यों का सिजरा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। क्या करना है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने दी है, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान योग से पवित्र बन, आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं आत्माओं का श्रृंगार करना है। कैसे? ज्ञान योग से पवित्र बन। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाता है। वरदान, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। कैसे मिलेगी विजय? जब पहले वो सहारा परमात्मा का अनुभव करती है, उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता है। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाप की कंपनी में रहो माना एक बाप के साथ रहो और एक बाप को ही अपना साथी बनाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो के अंतर्गत दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त वतनवासी बन, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दो। शांति और शक्ति की सकाश दो। तो प्यारे बाप दादा से आज मिलन का दिवस है, और जो पार्टियों में आए हुए भाई बहने हैं वो तो नीचे जाएंगे ही, परंतु यहाँ पर आपको बाबा की मुरली ऑनलाइन दिखाएंगे। तो ये ओम शांति भवन में तो सब हटा दिया है, तो यहाँ तो नहीं चलेगा बाबा का लाइव ट्रांसमिशन, तो मेडिटेशन हॉल में ही होगा। तो मेडिटेशन हॉल में, या अगर बारिश नहीं हुई तो बाहर आंगन में भी आप देखेंगे, तो यहाँ ही देखेंगे, यहाँ ही सुनेंगे। बाकी पार्टी वाले तो अवश्य नीचे जाएंगे, डबल विदेशी भी जरूर नीचे जाएंगे। अच्छा, जरूर नीचे जाएंगे। और तो यहाँ से वैसे वहाँ शांतिवन में डायमंड हॉल में 3 बजे से दरवाजे खुलते हैं, डबल विदेशी तो आगे बैठते हैं, बाकी सब के लिए पीछे से आना होगा। 3 बजे से आते हैं और पहले योग में बैठते हैं, फिर 5 बजे सूरज भाई का क्लास होता है, फिर भोग लगता है और फिर बाबा मिलन की वीडियो दिखाई जाती है। तो वो तो आप सभी करेंगे। और पांडव भवन में जो पार्टी वाले भाई बहने रुके हैं, हाथ उठाएं, जो पांडव भवन में रुके हैं, कल भी हाथ उठवाया था, यहाँ ही ठहरे हैं, नीचे से नहीं आए एक दिन के लिए, पर यहाँ ही ठहरे हैं, वो हाथ उठाएं। हाँ, तो अभी आप मुरली क्लास के बाद तुरंत हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे, वहाँ शशि बहन आपको सौगात देगी, क्योंकि मधुबन में ठहरे हैं। अगर नीचे सौगात ली है तो फिर और बात है, लेकिन यहाँ ही ठहरे हैं तो नीचे सौगात नहीं ली होगी तो यहाँ आप लेंगे, क्लास के तुरंत बाद आप वहीं जाएंगे और सौगात मिलेगी। और आज ये जो टोली है ये विशेष चक्रधारी दीदी ने शक्ति नगर से भेजी है, तो इस डब्बे सहित लड्डू है, बूंदी का लड्डू बड़ा बड़ा, तो ये आप क्लास की टोली आप लेंगे। तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहे। आज का प्रोग्राम भी आपको फिर से देंगे और सूचनाएं भी आपको देंगे कैसे आप नीचे जाएंगे, ठीक है? तो डबल विदेशी योग के बाद यहाँ बैठे रहेंगे। ओम शांति भारतवा।